तभी मारिया आगे आती हुई बोली, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। मारिया को देखकर वसुंधरा एक तरफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि मारिया से उसे पहले से ही डर लगा करता था, क्योंकि मारिया की पर्सनालिटी उसका आभा ही कुछ ऐसा था, और ऊपर से जब मारिया उसके घर की किडनैपिंग कर चुकी थी तो वो समझ चुकी थी कि मारिया कोई आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो आसानी से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद उसकी कैद से रिहा हो गई। तभी मारिया ने आगे कहना शुरू किया, नानी माँ, जब 8 से 10 लड़कियां हमारे कमरे में आईं तो उन्हें देखते ही मैं समझ चुकी थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने बहाने से उन लड़कियों के साथ लाया हुआ सामान बदल दिया, और आस्था, रश्मि, साथ ही साथ रौनक और राधिका समेत चुपके से इस बात के बारे में बता दिया कि वे सब लोग बेहोश होने की एक्टिंग करें। पहले उनकी आंखों में काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन उस वक्त मैंने जो कहा उन्होंने वही किया, और जैसे ही हम सब ने वहाँ बेहोश होने का नाटक किया तो हमने देखा प्रियंका शादी के जोड़े में वहाँ आई, और प्रियंका ने एकदम आस्था जैसा ही गेटअप लिया था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि प्रियंका भी वसुंधरा से मिली हुई है। इसीलिए मौका देखकर जब दुल्हन बनने के लिए वो लड़कियां वहां से तैयार होने के लिए बाहर निकल गईं, ठीक उसी वक्त मैंने उन सब लड़कियों को प्रियंका समेत एक जगह बंद कर दिया, और उसके बाद घूंघट ओढ़कर हम सब यहां आ गए, और किंग को मैंने मैसेज पर यह सारी सिचुएशन बता दी थी। तभी आस्था, जो कि अरमान के बराबर में खड़ी हुई, और उसने अपना घूंघट जल्दी से उठा लिया। इस वक्त आस्था की आंखों में काफ़ी सारे आंसू थे। आस्था सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी। आस्था हैरानी से प्रियंका को देख रही थी, और फिर धीरे धीरे छोटे कदम बढ़ाकर वो प्रियंका के सामने जाकर खड़ी हो गई, आंखों में गुस्सा लिए, और तुरंत उसने एक चांटा प्रियंका के मुंह पर मारा और नाउम्मीद से बोलती है, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे प्रियंका दीदी आप हमारे साथ ऐसा करेंगी। हाँ, आपने ऐसा सोचा भी कैसे लिया कि आप हमारी जगह ले लेंगी और हमारे पति से शादी कर लेंगी? आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अब प्रियंका की पोल तो खुल ही चुकी थी, तो प्रियंका का भी अब सब्र का बंध टूट गया। वो तुरंत आस्था का हाथ झटकते हुए बोली, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। मैं चाहती थी अरमान से शादी करना। मुझे नहीं पता था कि ये अरमान सिंघानिया इतना हॉट दिखता है, इतना पैसे वाला है। मुझे तो लगा था कि मेरे बाप मेरी शादी किसी बूढ़े से फिक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में वो मेरी शादी अरमान सिंघानिया से करवा रहे थे। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मुझसे गलती हो गई थी जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के दिन भाग गई। वहीं आस्था के मामा और मामी, जो कि वहां मौजूद थे, अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उन्होंने शर्म से अपना सर झुका लिया था। और सीमा जी को तो उस वक्त प्रियंका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि खुद ही अपने मुंह से वो अपना सारा सच एक्सेप्ट कर रही थी, और कहीं ना कहीं सीमा जी का इस साजिश में बहुत बड़ा हाथ था। वेल, तभी आस्था वसुंधरा की ओर देखकर बोली, आपकी जैसी घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। मुझे तो लगा था कि शायद एक माँ का दिल है, लेकिन एक माँ के दिल में इतना ज्यादा कड़वाहट से भरा हो सकता है ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और बहुत शौक है ना आपको मेरे पति को पागल बनाने का? हाँ, मेरे पति के साथ आपने बहुत ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब अपने पति पर हुए जुल्मों का हिसाब आपसे उनकी पत्नी लेगी। ऐसा बोलकर आस्था वसुंधरा को घूरने लगी थी। वही वसुंधरा ने तुरंत आस्था की ऐसी बात सुनकर उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, अपनी हद में रहिए। भले ही आप रिश्ते में मेरी सासू माँ हैं, लेकिन मैं आपके रिश्ते में बहू नहीं हूँ, समझे आप? और फिर वसुंधरा का हाथ झटक दिया। गुस्से से वसुंधरा को घूरने लगी थी। वही नानी माँ ने जल्दी ही अपने बेटे की ओर देखते हुए सख्त आवाज में बोली, यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अपनी इस बेशर्म बेटी को लेकर निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं प्रियंका मार मार कर जान ले लूं। ऐसा कहकर उसने जल्दी ही मनोज जी के हाथों प्रियंका को ले जाने के लिए कह दिया था, और प्रियंका एक नज़र अरमान की ओर देखती हुई तिनक कर वहां से चली गई थी। और वही वसुंधरा समझ चुकी थी कि उसका भेद खुल चुका है, और साथ ही साथ जब से उसे पता चला कि उसका बेटा अरमान के कब्जे में है, तो वो तुरंत घुटनों पर आ गई थी और घुटनों के बल बैठकर बोली, देखो अरमान, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपने बेटे वीर के लिए इस तरह से वसुंधरा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर अरमान के दिल में कुछ चुभन हुई। ये औरत वीर के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अरमान भी तो उसका बेटा था। लेकिन क्या कभी इस औरत के मन में अरमान के लिए कोई रहम नहीं आया? अरमान के लिए कोई फीलिंग नहीं आई? ये सब सोचते हुए अरमान केवल वसुंधरा को बिना एक्सप्रेशन के घूर कर देखता रहा। लेकिन दादाजी ने तुरंत वसुंधरा के बालों को कसकर पकड़ा और टोकते हुए बोले, अब बस करो अपना ये सारा ड्रामा। क्या कहा? तुम्हारा बेटा छोड़ दे, और तुम जो मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक बार नहीं सोचा, फिर उसे बर्बाद करने के लिए इस घर में आई, उसका क्या? हाँ, निकल जाओ यहाँ से, और अब तुम्हारे बेटे की लाश ही तुम्हारे पास आएगी। ऐसा बोलकर जल्दी ही उन्होंने वसुंधरा को धक्का दिया था, और वसुंधरा तुरंत आगे गिर गई थी। लेकिन जैसे ही वसुंधरा गिरी, तब वहां पर कोई और भी खड़ा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर था, जो कितनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वहां आ गया था, क्योंकि वो आस्था और अरमान की शादी एक बार फिर से नहीं होने देना चाहता था। लेकिन जब तक वो वहां आया तब तक देर हो चुकी थी और वो सारी बातें भी सुन चुका था। साथ ही साथ उसे ये पता चल चुका था कि वीर इस वक्त अरमान के कब्जे में है। वही अबीर को वहां देखकर आस्था सहम गई थी। उसने तुरंत अरमान की बाजू को पकड़ लिया था, लेकिन तब तक आकाश, सुमित, चूफ, आहान ने तुरंत गन पॉइंट पर अबीर को ले लिया था। वही अबीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ किसी की जान लेने या मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट अरमान सिंघानिया से बात करने के लिए आया हूँ। ये कहकर अबीर जल्दी अरमान सिंघानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया था। अरमान ने उन सबको शांत रहने का इशारा कर दिया था और सबने अपनी बंदूक नीचे कर ली थी। तभी अबीर और अरमान इस वक्त आमने सामने थे और आस्था ने अरमान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तब अबीर ने एक नज़र आस्था की ओर देखा। आस्था से उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आस्था की आंखों में आंसू अबीर की आंखों में चुभ रहे थे। तभी अबीर ने अरमान की ओर देखकर कहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब जैसे ही अबीर ने यह बताया, सब हैरानी से अबीर की ओर देखने लगे। तभी अरमान बोलता है, वेरी गुड डिसीजन मिस्टर अबीर सिंह राठौर, बहुत लकी हो कि जिंदा बचकर यहाँ से जा रहे हो। तभी अचानक अबीर सिंह राठौर जोरों से हंसने लगा और अगले ही पल अपना चेहरा डार्क करके बोला, मैं सिर्फ सिंघानिया मेंशन से जा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी से नहीं अरमान सिंघानिया, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अपनी बटरफ्लाई को चोरी करने के लिए आया था। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, आस्था डार्क एक्सप्रेशन से अबीर की ओर देखने लगी थी, जैसे किसी सनकी इंसान को देख रही हो, और उसने अरमान के हाथों को और कसकर पकड़ लिया था। तभी अरमान अबीर की ओर देखकर बोला, बिहेव योरसेल्फ, योर लैंग्वेज, वो मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया है, तो तमीज से नाम लो। तभी अबीर सिंह राठौर बोला, होगी वो मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बटरफ्लाई है।
और मैं यहाँ से और सिर्फ अपनी बटरफ्लाई से सॉरी कहने के लिए आया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वीर रायचंद ऐसा कुछ भी सोच सकता था, वरना अपनी बटरफ्लाई की तरफ उठने वाली आंखों को मैं कब का फोड़ चुका होता। ऐसा बोलकर अबीर आस्था को देखने लगा था। वही आस्था तुरंत अबीर की ओर देखकर बोली, देखिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए, समझे आप, और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम आपसे कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन आप में तो शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज़ ही नहीं है। आप एकदम चिकने खड़े हुए पड़े हों, जितना भी आपकी बेइज्जती किया जा रहा है उतना आप उल्टा उठकर हमारे सामने आ रहे हैं। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? एक बात याद रखना, आप जो कोई भी हैं, हम सिर्फ अपने पति से प्यार करते हैं और हम जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आस्था ने एक बार फिर अबीर की इंसल्ट की थी, लेकिन अबीर बदले में आस्था को देखता रहा। आस्था का बोलना, उसकी आंखें, उसके होठों से जैसे बोलती हुई, आस्था के हिलते हुए होठों को इस तरह से उसकी आंखें भी बोलती थी, और अबीर को ये सब कुछ बड़ा ही मनोरंजक लगा करता था। इसीलिए वो आस्था को बोलते हुए देख रहा था और अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, दिल तो करता है कि बस आप इसी तरह से मुस्कुराती रहें और मैं आपको इसी तरह से देखता रहूं। ऐसा बोलकर अबीर एक नंबर का सड़क छाप आशिक लग रहा था। वेल, तभी अरमान ने टाइगर की ओर इशारा किया और टाइगर ने तुरंत आकर अबीर के कंधों को पकड़ लिया था। तब अरमान ने टाइगर की ओर देखकर कहा, टाइगर, अबीर सिंह राठौर को जिंदा बाहर छोड़कर आ जाओ। अरमान ने जानबूझकर जिंदा शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था और अबीर केवल आस्था की ओर देखता हुआ जल्दी ही वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर को इस बार के बारे में पता चल चुका था कि वसुंधरा क्या प्लान करने वाली है, और इसीलिए वो आस्था को बचाने के इरादे से सिंघानिया मेंशन में आया था। लेकिन यहाँ तो अरमान सिंघानिया ने पहले ही सारा खेल पलट दिया था, तो इसीलिए वो अब वहां से वापस जा रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था कि उसकी आस्था पर, उसकी बटरफ्लाई पर गंदी नजर डालने वाले वीर रायचंद के वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। वहीं वसुंधरा को भी जल्दी ही सिक्योरिटी ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, और तब नानी माँ ने कान्हा जी का ढेर सारा धन्यवाद दिया था और आस्था को जोरों से गले से लगा लिया था और फिक्र जताते हुए बोली, मेरी बच्ची, अंत भला तो सब कुछ भला, अच्छा हुआ सही वक्त पर सभी दुश्मनों के इरादों के बारे में पता चल गया। मेरी बच्ची, तुम आज बाल बाल बच गई, और तू फिक्र मत कर, हम जल्दी ही कान्हा जी को धन्यवाद देने के लिए कान्हा जी के मंदिर भी जाएंगे। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वही रश्मि दुल्हन बनी हुई आकाश की ओर देख रही थी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, और तब दादाजी की आंखें आज पूरी तरह से भरी हुई थी। आज बड़ी मुश्किल से अरमान की जिंदगी की सिचुएशन कंट्रोल में आई थी, और तभी उन्होंने कसम खाई थी कि आज के बाद वो इस औरत का साया अपने बच्चों पर कभी भी पड़ने नहीं देंगे। वेल, अब जल्दी ही रौनक आस्था रश्मि को लेकर उनके कमरे में चली गई थी और उन्हें उनके कमरे में तक छोड़ आई थी। वहीं राधिका भी अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने कहा था तो एक हफ्ता उसे वहां रुकना ही था, क्योंकि एक हफ्ते में सारी रस्में पूरी हो जानी थी। वहीं नानी माँ को प्रियंका पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि काश उसने हल्दी वाली बात नानी माँ से छुपाई ना होती, तो शायद प्रियंका की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ पाती।
ना ही वो इस तरह से आस्था की जिंदगी से खेलने के बारे में सोचती, लेकिन फिलहाल नानी माँ पछता रही थी और इसीलिए इस बात का कन्फेस करने के लिए उन्होंने अरमान से मिलने का फैसला किया था और जल्दी ही अरमान से उन्होंने सारी बातें बता भी दी थी। तब अरमान ने मुस्कुराकर नानी माँ के कंधे पर हाथ रखा और बोलता है, नानी माँ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त आप प्रियंका को डांट रही थी उस वक्त मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन चुका था। जैसे ही अरमान ने ये कहा नानी माँ की आंखें हैरत से फैल गईं और वो समझ चुकी थी कि उसके दामाद की नजरें बास से भी ज्यादा तेज हैं। वहीं रश्मि दुल्हन बनी हुई आकाश के आने का इंतजार कर रही थी। आज फाइनली रश्मि कंप्लीट हुई थी और उसकी मोहब्बत की जीत हुई थी, तो आज रश्मि के चेहरे पर मोहब्बत का ग्लो अलग से नजर आ रहा था। वहीं आस्था का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आस्था शर्माई शर्माई से घूंघट ओढ़कर इस तरह से बैठी हुई थी मानो कि आज असल में उसकी शादी हुई हो और आज फर्स्ट टाइम उसका पति उसके पास आ रहा हो। ऊपर से आस्था को वो दिन भी अच्छे से याद था जब शादी के पहले रात ही अरमान ने आस्था पर सीधे सीधे बंदूक चला दी थी, लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज आस्था और अरमान के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था। हालांकि अरमान का प्यार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन प्यार बहुत था। वेल, अब जल्दी ही अरमान नानी माँ से मिलने के बाद अपने कमरे की ओर जाने लगा था और जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंचा तो वो हैरान हो गया।